मेरे सहृदय साथियों नमस्कार। आज 18 अगस्त 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कल हम लोग लक्ष्य की संवेदनशीलता पर बात कर रहे थे और उसी दौरान मैंने आप सबको भी कुछ फूड फॉर थॉट दिया था, यानी कि सोचने के लिए कुछ बिंदु दिए थे और मैंने आपसे ये कहा भी था कि इसी विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो आज भी हम लक्ष्य की संवेदनशीलता पर ही बात करेंगे। यहां मैं थोड़ी सी बात इस पर करूंगा कि अगर लक्ष्य की संवेदनशीलता हम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप इसे कन्विंस हो गए हैं, तो फिर हम उसे हासिल करें कैसे, यानी कि वो है क्या और कैसे हम उसे अपने अंदर लेकर आए। तो आइए अब हम इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। मित्रों, मुझे यकीन है कि आप सब ने भी, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म देखी होगी। हालांकि नाम इसका कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए आकर्षित शायद न करे, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन फिल्म जरूर ये है और इसमें कुछ बहुत अच्छे सवाल उठाए गए हैं। खैर, मैं फिल्म पर नहीं जा रहा हूं। यदि आपने उसे देखा हो तो भी और नहीं देखा हो तो भी, आपने महसूस किया होगा फिल्म को देखते समय कि दो वर्ग हैं। सीधे सीधे अक्षय कुमार हैं हमारे और दूसरे उनके पिता हैं। उनके पिता ब्राह्मण परिवार से हैं, जो बहुत ही परंपरावादी और धार्मिक पुरुष हैं, पंडित हैं, परंपराओं को, ज्योतिष को, धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। जबकि अक्षय कुमार में धीरे धीरे ये चीजें टूटने लगी हैं, वो विचार प्रधान होने लगा है और उसका कारण ये है, उसकी पत्नी जिससे प्रेम वो कर रहा था वो यूपी की टॉपर है। देखिए, वो टॉपर है यानी कि उसके अंदर बौद्धिकता आ गई है। जब वो पत्नी बन करके आती है तो वो टॉयलेट की मांग करती है और टॉयलेट के आधार पर फिर एक सांस्कृतिक संघर्ष शुरू होता है। बेसिकली टॉयलेट शब्द तो एक प्रतीक है, उसका संबंध सोच से है और वो फिल्म में स्पष्ट रूप से बताया भी गया है। अब आप देखिए कि जो पिता है, या हम इसको पिता न कह के सीधे सीधे जो बहुत ही परंपरावादी धार्मिक व्यक्ति हैं, वो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, हमें अपने धर्म से जुड़ा ही होना चाहिए। गीता में भी यही कहा है कि स्वधर्म का पालन करें और हर व्यक्ति का अपना धर्म है और उससे जुड़े रहने का उसको अधिकार भी है, राइट? धर्म से जुड़े होना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि ये जो धर्म से जुड़ा होना है, इसके दो आधार हो सकते हैं, दो रूप हो सकते हैं। पहला तो यह कि मैं बिल्कुल संवेदना के स्तर पर इससे जुड़ा हुआ हूं, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। जैसा कि आप देखिए कि टॉयलेट एक प्रेम कथा में पिता उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते, प्रेम के, ये आपके धर्म के खिलाफ। और भी गांव के लोग हैं, नहीं सुनना चाहते, और आज भी ऐसे समाज, ऐसे व्यक्ति दुनिया के हर देश में मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत में ही है, भारत में कुछ ज्यादा हो सकता है, फर्क इतना ही है। तो मित्रों, जो संवेदनशीलता के स्तर पर जो धर्म से जुड़ जाता है, वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहेगा, सोचना भी नहीं चाहेगा। अगर आप उसे बताने की कोशिश कीजिए कि भैया इस पर थोड़ा सा विचार तो करो, तुम ही ये काम कर रहे हो, दूसरा तुम ही ये काम कर रहे हो, एक तरफ तुम इसका हवाला दे रहे हो काट करके और उसी के साथ ही उसी में दूसरी चीजें लिखी हुई हैं वो तुम बता नहीं रहे हो, तो किसी चीज को वो स्वीकार नहीं करता। यानी कि वो इतने गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। मित्रों, मैं यहां धर्म और समाज और चेतना का मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, मैं तो लक्ष्य और संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं। तो वो धर्म से के विरोध में कुछ भी सुनना नहीं चाह रहा है और उससे बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या है? आप देख रहे हैं सिर्फ इमोशंस। तो यहां ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें अपने धर्म से, इमोशन से ही जुड़े रहना चाहिए। प्लीज आप इसको थोड़ा सा इस रूप में लेंगे, क्योंकि धर्म तो एक फ्लोइंग रिवर की तरह है, एक बहते हुए नदी की तरह है जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और एक दार्शनिक ने कहा है कि आप एक ही नदी को दोबारा पार नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप जब नदी को पार कर रहे हैं तो पहले वाला पानी बह चुका है, और अगर पानी है तो नदी है, तो आप उसी नदी को पार नहीं कर सकते। तट वही है लेकिन पानी वही नहीं है। तो धर्म तो एक फ्लोइंग रिवर है, लेकिन वो फ्लोइंग रिवर कब होगा? जब आप उसको तर्क के आधार पर लेंगे, और इस फिल्म में इसी को स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे पिता लाख कर कोशिशों के बावजूद, परिवार टूटने को आ गया है, सब कुछ हो गया है, अपने बच्चे बेटे के खिलाफ ही वो कितना जबरदस्त जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति आ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म से संवेदना के स्तर पर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी से संवेदना के स्तर पर जुड़ जाते हैं, उसके खिलाफ फिर कुछ सुनना पसंद नहीं करते और उसके लिए कुछ भी करना पसंद करते हैं। यूं कह लीजिए, कुछ भी करना पसंद करते हैं का मतलब है हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, और उसके खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते इसका मतलब है कि हम सारे विकल्पों को गिरा देते हैं। नो अल्टरनेटिव, मेरे लिए तो जो कुछ भी है बस यही है। तो मित्रों, ये जो अंदर से जो भाव पैदा हुआ है या जो कह लीजिए ताकत आई है, ये कैसे आई है? सिर्फ संवेदना से के स्तर पर जुड़ने से, जिससे कल मैंने माँ और आया के माध्यम से जो ममत्व बच्चे को मिलता है उसके उदाहरण के जरिए भी स्पष्ट करने की कोशिश की थी। तो मित्रों, जब हम अपने लक्ष्य से संवेदना के स्तर पर जुड़ जाते हैं तो फिर हम पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। देखिए, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो वही धर्म की बात है जो भक्ति मूवमेंट ने कहा कि आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, अपने को दास बनाते हैं, ईश्वर हमारे लिए मालिक बन जाता है। या सूफी परंपरा की हम बात करें तो ईश्वर हमारे लिए प्रेमिका बन जाती है, हम उसके प्रेमी बन जाते हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। लैला मजनू राधा कृष्ण की कहानियां यही बात बताती हैं। तो ठीक वही संबंध भक्त और ईश्वर में स्थापित हो जाता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो दोस्तों, लेकिन यहां एक बात और है, एक बात मैं आपको यहां और कहना चाहूंगा, अदरवाइज ये एक तरफा हो जाएगी और मुझे लगता है कि शायद बहुत खतरनाक स्थिति भी हो जाएगी, क्योंकि हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं, हम न धर्म की बात कर रहे हैं न हम प्रेम की बात कर रहे हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे लगता है कि आप सब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो याद रखिए कि असफलताएं मिलेंगी, असफलताएं मतलब कह लीजिए अवश्यंभावी हैं, मिलनी ही मिलनी है, असफलताओं के दौर से हमें गुजरना ही पड़ता है। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो याद रखिए फिर ऐसा नहीं कि मैं इसे तो छोड़ूंगा ही नहीं क्योंकि मैं तो संवेदना के स्तर पर जुड़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं होता है। जब हम असफल होते हैं तब फिर हमें तर्क का सहारा लेना पड़ता है। तर्क का सहारा इसलिए नहीं कि अब मैं अपने लक्ष्य को छोड़ रहा हूं, याद रखिए कि अब मैं अपने लिए कोई विकल्प ढूंढ रहा हूं तर्क के माध्यम से, नॉट एट ऑल, बल्कि इसलिए कि मैं तर्क के आधार पर अपनी असफलताओं के कारणों को तलाश कर सकूं कि मैं असफल क्यों हुआ हूं। वहां यदि मैं इमोशन को लेकर के चलूंगा कि नहीं, मैं तो जो कर रहा हूं वह सही ही है, ऐसा ही होना चाहिए और इसी से मैं पालूंगा, वो फिर गलत हो जाएगा। तो देखिए, लक्ष्य से विचलित हम ना हों, इसमें संवेदना काम आती है, और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, उसके लिए सही रास्ते तलाश कर सकें, इसमें तर्क काम आता है। राइट फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी एक दूसरी बात पर आ रहा हूं जो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को न भी पचे। मित्रों, वह यह है कि अक्सर जब हम बड़े बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं, जैसे अब मेरा ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस और डेली ऑडियो लेक्चर है, नो डाउट कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को मूल रूप से है, और डेली जो लाइफ मैनेजमेंट है वो तो सभी के लिए है। तो चलिए मैं सिविल सर्विस की ही बात को तो उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं। फ्रेंड्स, जैसे जब हम आईएएस बनने की बात करते हैं तो आप सुनिए, लोग बड़े बड़े आदर्शों की बात करेंगे, और जब मोटिवेट करने की कोशिश करते तब भी बड़े बड़े आदर्शों की बात होती है कि देखिए इसमें आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसमें बहुत पावर्स होते हैं और बड़ी फैसिलिटी मिलती है और बड़ी सैलरी है, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में केवल ये आना चाहिए कि हमें समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, ये बात अक्सर कही जाती है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके मन में सुविधाओं की बात और अधिकार की बात आएगी तो फिर आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सही चीज नहीं है, आदर्श चीज नहीं है, नैतिकवादी नहीं है, कुछ दिनों में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। मित्रों देखिए, आदर्श की बात करना तो एक अलग बात है, लेकिन जीवन तो यथार्थ है। कितना अच्छा हो कि हम यथार्थ और आदर्श को लेकर चलें। ठीक है, मुझे समाज की सेवा करनी है, समाज के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना है, ये मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के दिमाग में कहीं न कहीं होता ही है, क्योंकि अंततः वह मनुष्य है और मनुष्य चेतनशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, और उसे होना भी चाहिए। मित्रों, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि जो संवेदनशीलता है उसको स्थापित करने के लिए क्या हर्ज है कि हम थोड़े से लोभी ही हो जाएं, हम थोड़े से स्वार्थी ही हो जाएं, क्योंकि हम एक बड़ी चीज को हासिल करना चाह रहे हैं। यह बात अलग है कि जब हम उसको हासिल कर लेंगे तो फिर ना हम सिर्फ लोभी रहेंगे और ना हम सिर्फ स्वार्थी रहेंगे, वो चीज तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो मिले, हम उसे हासिल कर लें, इसके लिए जो तरीके हो सकते हैं, अगर मैं उन तरीकों को अपने खुद को सेल्फ मोटिवेट मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, अपनी संवेदनशीलता को जन्म देने के लिए या उसे और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत गलत है। मैं व्यावहारिक स्तर की बात कर रहा हूं, तो आदर्श के स्तर पर तो मैं भी आपसे यही कह सकता हूं कि नहीं, ये सब चीजें तो दिमाग में बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, ये तो एक तरीके से दिमागी प्रदूषण है। ऐसा नहीं है मित्रों। देखिए, हम ज्यादातर स्टूडेंट के सपने क्यों रहते हैं कि वो आईएएस बन जाएं, वो बने ना बने, कोशिश करें ना करें, ये बात अलग है, लेकिन सपने तो होते ही हैं। तो ठीक है, समाज के लिए कुछ कर पाना उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि यार हम बन जाएंगे तो देखो हमारे पास इतने पावर्स होंगे, समाज में हमारा एक सम्मानजनक स्थान होगा, लोग हमारे रिगार्ड करेंगे, सुविधाएं जो हमें जीवन की चाहिए वो मिल जाएंगी, जीवन में एक निश्चिंतता आ जाएगी, हमारी एक अलग पहचान बन जाएगी, जीवन के जो दूसरे रोजमर्रा के जो आपाधापी हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये सब तो हमारे दिमाग में आते ही है ना, तो आते ही है तो आने दीजिए, उसे रोकिए मत। आदर्श के नाव पर बैठ करके और इस यात्रा में निकलने का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, है ना, आदर्श और यथार्थ दोनों को लेकर चलिए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए थोड़ा सा लोभी हो जाना, थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना कोई गलत नहीं है, बशर्ते कि उससे हमें हमारी संवेदनशीलता को ताकत मिलती हो, हमें संवेदनाएं मिलती हो, इसी आधार पर ही सही चलिए, आप एक बड़ी चीज हासिल करेंगे। देखिए, तो सोचने की बात है, तो दिमागी स्थिति है ना, आप कुछ कर थोड़ी रहे हैं, आप सिर्फ एक दिमागी स्थिति है और हमें दिमाग को मैनेज करना, आप इसे माइंड मैनेजमेंट कह लीजिए, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए, बात वही है। तो मित्रों, ये मैंने आपसे लक्ष्य की संवेदनशीलता, लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता को लेकर के कुछ बातें कही हैं, आप लोगों ने सुनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस पर विचार भी किया होगा। अगर आप लोगों ने विचार किया है तो मुझे अपने विचारों से अवगत कराएं, डेफिनेटली इससे मेरे अपने विचार भी दुरुस्त हो सकेंगे और उनका विकास भी हो सकेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाऊंगा, तो इसी के साथ ही मैं अब 2 दिन की छुट्टी की इजाजत चाहते हुए आप सबसे अब अनुमति भी चाहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।